जीविका मोबाइल वाणी सुन रहे सभी जी दीदियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कुछ नई जानकारियों के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप लोग ये बार बार सोच रहे होंगे कि हम लोग जब आते हैं या आप लोगों के सामने जब ये जानकारी साझा करते हैं तो ये वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जीविका से जुड़ी हुई जानकारी कहीं ना कहीं हम सब दीदियों के लिए एक अहम बात होती है और हम लोगों के हित में होता है। तो आइए आज हम आपको अपने नालंदा जिला के एसडी मैनेजर संतोष सर के साथ आप लोगों को कुछ नई जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जो जानकारी है इंदिरा आवास के रूप में। आइए सर से जानते हैं कि इंदिरा आवास जीविका से किस तरह का कार्य करेंगे या जीविका को क्या प्लान मिला है, जीविका कैसे काम करेगी। आइए हम संतोष सर से सुनते हैं। संतोष सर, आपका मोबाइल वाणी में स्वागत।
धन्यवाद आपका भी। और सबसे पहले मैं मोबाइल वाणी के सभी श्रोतागण को नमस्कार करता हूं, और मोबाइल वाणी के सभी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया फिर से एक बार बात करने का। हमारे दीदियों के साथ जुड़ने का मौका मिला है। सभी हमारे जीविका के परिवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता प्रमुख रूप से होती है, जिसके लिए हमारे बिहार सरकार और भारत सरकार के कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें एक योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में आप जानते थे, वो कार्यक्रम चल रही है। इस योजना के तहत आप जानते हैं कि सरकार उन सभी गरीब परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं और उनके पास अगर पक्की मकान नहीं है तो उन्हें पक्की मकान बनाने हेतु मदद प्रदान करते हैं। तो अभी मैं बेसिक चीजें मैं अगर बात करूं तो इंदिरा आवास में जो लाभुक होते हैं, लाभुक के बारे में आपने समझा कि वो वैसे लाभुक जो कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं और जिनके पास पक्का मकान नहीं है, तो उनको अब पैसा मिलता है। ये रकम आप बात करेंगे तो अभी वर्तमान में 1.5 लाख रुपए का आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग चीजों के लिए 1.5 लाख रुपए तक मदद सरकार देती है, जिसको कि 3 भाग में सरकार ने बांटा है। प्रथम भाग जैसे है कि 2 तरह के जिले यहाँ बांटे गए हैं, एक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो होता है जिला, और एक सामान्य जिला। तो अगर नालंदा की बात करें तो यह सामान्य जिला में आता है। तो प्रथम किस्त, जैसे ही किसी लाभुक का नाम पास होता है, पारित होता है, उन्हें प्रथम किस्त की स्वीकृति के साथ ही 50,000 रुपया उनके खाते में चला जाता है, और फिर पुनः जब वो प्लिंथ स्तर पर वो अपना मकान को खड़ा करती है तो फिर द्वितीय किस्त भी 40,000 के रूप में उनको मिलता है। इसी तरह से तृतीय किस्त भी छत ढलाई के बाद उनको 30,000 मिलता है। तो इस तरह से 3 राउंड में उन्हें 1,20,000 रुपये की मदद मिलती है, और साथ ही उन्हें मनरेगा के अभिसरण से 90 दिनों का उन्हें मजदूरी की रूप में उन्हें 18,000 रुपये का मदद उन्हें मिलता है। और उसके बाद लोहिया स्वच्छ बिहार योजना से शौचालय निर्माण करने हेतु भी 12,000 रुपये। तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो कुल 1.5 लाख रुपये उन्हें मिलता है। किंतु अभी हम जो बात कर रहे हैं, मुख्य मुद्दा जो है कि आज हमें जीविका को भी इंदिरा आवास, चूंकि अभी अभी तक तो हम लोग नहीं बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को जीविका को भी इंदिरा आवास पर बात काम करना है। खास करके हम लोग जागरूकता पर काम कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे इंदिरा आवास में तो बहुत सारे ऐसे घर हैं, परिवार हैं, जिन्होंने मकान का अलॉटमेंट हुआ, पैसा भी मिला है, और किसी कारणवश उन्होंने मकान अपना पूर्ण रूप से निर्माण नहीं किया है। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो कारण चाहे या तो हो सकता है पैसा उन्हें मिला होगा और पैसा कहीं खर्च कर दी होंगी, या फिर हो सकता है कि मकान बनाने में थोड़ा लेट कर दी होंगी तो सामग्री का रेट ज्यादा हो गया होगा, तो इस सब कारणों से भी देरी होती है। लेकिन किंतु चूंकि सरकार का पैसा है और सरकार ने गरीबों को अपना मकान बनाने के लिए दिया है, छत बनाने के लिए दिया है, जो कि कोई भी बारिश, धूप और ठंड से बच सके, तो एक सरकार की पहल है, उसमें हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो अभी हम उन सभी दीदियों से, उन सभी परिवारों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों ने अपने आपका मकान का ऐसा प्रथम किस्त मिला होगा या फिर द्वितीय किस्त भी मिला होगा और किसी कारणवश अगर आपने नहीं बना पाए हैं मकान, तो उसे जल्द से जल्द आप उसको बना लेना चाहिए, और ताकि फिर आगे क्या, अगर मान लिए कि आगे का उन्हें पैसा नहीं मिला है तो उसे लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उनको पैसा मिल सके। तो हमारे पास सूची भी है, प्रखंड वाइज सूची हमारे पास है, किनका किनका अलॉटमेंट हुआ था और उन्होंने मकान नहीं बनाया है, तो वो सूची हम लोगों ने सभी प्रखंड के सभी प्रखंडों में जीविका जो कार्यालय है प्रखंड परियोजना प्रबंधक को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है, और उनमें सभी का नाम है, पति का नाम है, घर परिवार है, वो सभी चीजें हैं। तो इस तरह से हम पुनः रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने मकान को बनाए।
तो सर यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है कि इसमें जीविका का जो रोल होना, जो हम लोग रोल रिस्पॉन्स करेंगे या जीविका दीदी से जो हमारे बीपीएल के नीचे कम होगी, जो गरीबी रेखा से नीचे की दीदी होंगी, उनके लिए किस तरह की सहायता जीविका के तरफ से दिया जाएगा और क्या क्या किस किस मुद्दे पे काम कॉपरेट मिल सकेगा?
देखिए अभी जैसा कि हमने तीन कारण बताए हैं, मुख्यतः तीन कारण हो सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ। पहला कारण तो ये है कि उन्हें पैसे मिले होंगे, ठीक है ना, मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे कारण और भी हैं जो कि शायद बोलना नहीं ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि उन्हें पैसा मिला होगा और कहीं दूसरी जगह उन्होंने खर्च कर दिया, ठीक है। तो अभी ये एक अच्छा है कि उन्हें लगता है कि अगला किस्त भी उन्हें मिले, उनका भी पक्का मकान का जो सपना है वो पूरा हो। तो जीविका के पास उनके जो समूह में जुड़े हुए हैं, जो ग्राम संगठन में जुड़े हैं, वहाँ पैसा है, वो वहाँ से पैसा लेकर अभी लोन पर ले ले और अपने मकान को पूर्ण करे, और पूर्ण करने के बाद अगली किस्त के लिए वो काम कर सकते हैं। तो अभी हम उन सभी सीएम दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो सूची को लेकर अपने ग्राम पंचायत, अपने ग्राम संगठन, अपने समूह में जाए, उन दीदियों से मिले, उन कारणों को पहले पता करे कि क्या कारण है, और अगर लगता है कि छोटा मोटा कारण के कारण अगर रुका हुआ है तो हम लोग उन्हें मकान बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अभी मुख्य रूप से हम लोगों को ये मदद दे सकते हैं कि जो दीदी अगर किसी कारणवश घर नहीं बना पाई है और पैसे की कमी अगर है लगता है, तो उन्हें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट समूह के माध्यम से हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि घर में आपस में दो भाई है या तीन भाई है और आपसी विवाद के कारण, जमीन हो सकता है एक साथ होगा, विवाद के कारण वो घर रुक गया होगा, तो ऐसे कंडीशन में हमारे समूह की दीदियां जो है उनका समस्या को सुनकर उन्हें एक दूसरे को बैठाकर आपस में सामंजस्य बनाकर उनका मकान पूर्ण कराने का हम लोग काम करें।
जी सर यहाँ पे एक सवाल उठता है कि दूसरे किस्त के लिए क्या जीविका के लोगों के द्वारा पहल किया जाएगा या वो स्वतः खुद पहल करेंगे?
जी देखिए पहले सबसे पहले तो ये है, अभी हम लोग कारण निकाल, ठीक है, अगर लगता है कि किसी ने पहला किस्त रकम लिया है और जितना उन्हें प्लेन तक मकान बनाना था अगर उन्होंने नहीं बनाया है, तो हमारा ये होगा कि उनका प्लेन तक मकान को खड़ा कर दे, और निश्चित रूप से हम लोग निश्चित रूप से ये इंश्योर कराना चाहेंगे और बात करेंगे आगे ऊपर कि हम उन्हें दूसरी किस्त जहां से रुका हुआ या तीसरी किस्त रुका हुआ है उनके आगे का रकम हम लोग दिलवाएंगे।
कुछ सामाजिक कार्यकर्ता के वजह से भी इस तरह की भ्रम फैलाई जा रही होगी, तो वहाँ पे हम लोग किस तरह हम लोग देखेंगे?
देखिए ग्रामीण है, ग्रामीण लोग है,
एक ऐसा चीज देखा गया था कि जब हम लोग शौचालय के लिए कार्य कर रहे थे तो वहाँ पे भी काफी सारे समस्याएं उत्पन्न हो रही थी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो हमारे जो जीविका से जुड़ी हुई दीदी हैं, उनके जो मन में अगर किसी तरह का इस तरह का सवाल हो तो उनके लिए क्या करना होगा?
देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई नए इंदिरा आवास का अलॉटमेंट के लिए हम लोग अभी कोई काम, सबसे पहली बात, भ्रम वही फैलता है कि जीविका लोग करेंगे और हो सकता है मतलब कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, या फिर जो एलिजिबल नहीं है, जो लाभुक लगता है कि मापदंड को पूरा नहीं करते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो हम ये सीधे आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि नए इंदिरा आवास के लिए हम लोग कोई बार काम नहीं करें, हमारे पास ऑलरेडी सूची है, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज, टोला वाइज हमारे पास सूची है, हम उन सूची को ही लेकर आगे बढ़ेंगे, हम उन सूची के अलग हम कोई काम करने नहीं वाले हैं, हम बस वही करेंगे कि जो दीदी हमारे समूह से जुड़ी हुई है और उन्हें भी पक्का मकान होनी चाहिए थी और वो एक किस्त या दो किस्त लेकर के मकान को पूर्ण नहीं कर पाए हैं, उन्हें हम प्रेरित करके मकान।
जी एक छोटा सा सवाल अंत में, ये कि जो समूह, जो लिस्ट हमारे जीविका दीदी के पास जाएगा, उस लिस्ट में जो नाम होंगे अगर समूह से बाहर होंगे तो उनके लिए भी ये कार्य जरूरी है?
देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने सही सवाल किया है, हम समाज में अगर काम करते हैं, ठीक है ना, तो पहली बात तो मैं ये बात कहूंगा कि अगर वो एलिजिबल है तो हमारे समूह में अवश्य जुड़ी होगी, क्योंकि हम भी गरीबों के साथ काम करते हैं और इंदिरा आवास भी गरीब लोगों को ही मिलता है, लेकिन फिर भी वैसा एक दो ऐसे मिलेंगे, ठीक है, और लगता है कि वो गरीब है तो निश्चित रूप से हम पहल करेंगे कि वो आवास बनाए, हो सकता है कि हम उसे वो फिनेंशियल सपोर्ट ना दे पाए, क्योंकि फिनेंशियल सपोर्ट उन्हीं को मिलता है जो समूह में जुड़े हुए हैं। तो समूह में अगर नहीं जुड़े हुए तो हम प्रयास करेंगे कि उन्हें समूह से जुड़े पहले
जी,
अगर समूह से जुड़कर फिर मदद करना होगा तो जरूर मदद करेंगे।
जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी, आपने हमारे एसडी मैनेजर की सारी बातें आपने सुना, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो कार्य करते हैं कहीं न कहीं ऐसे दीदियों के लिए कार्य करते हैं, जो दीदी हम गरीबी रेखा से नीचे आती हैं, और हम लोग जो जीविका के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो वैसे ही लोगों दीदियों के साथ कार्य किया जाता है जो हम लोग मजबूत बनाने का काम करते हैं, जिनका परिवार स्वतः खुद से वो चलाने का काम करें। ऐसे ही काम में एक काम इंदिरा आवास आया है, जो केंद्र सरकार द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा हो, जो भी आवास है उनकी लिस्ट हमारे जीविका के जो कैडर है उनके पास है। वो जो दीदी जीविका के कैडर के लिस्ट में नहीं होंगी उनको हम लोग जीविका में जोड़ने का काम करेंगे और फिर मदद देने का काम करेंगे। तो दीदी, अगर कोई लोग दीदी हम समूह में नहीं जुड़े हैं, अगर उनका नाम इस इंदिरा आवास में आ रहा है, तो हम सब लोगों से विनती करेंगे कि आप समूह में जुड़े और जुड़ करके इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।